तृतीय के बाद उसका पुत्र अमोघ वर्ष 814 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। उस समय वह अल्पवयस्क था तथा गुजरात के वायसराय कर्क ने उसके संरक्षक के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया। 817 ईस्वी के लगभग उसके विरुद्ध एक भीषण विद्रोह हुआ। इस विद्रोह का नेतृत्व वेंगी के चालुक्य के शासक विजयादित्य द्वितीय ने किया तथा इसमें कुछ अन्य सामंतों एवं अधिकारियों ने भाग लिया। अमोघ वर्ष घबरा गया और वह भागने वाला था, लेकिन कर्क ने स्थिति संभाल लिया। 821 ईस्वी तक उसने विद्रोहियों को दबा दिया तथा अमोघ वर्ष की स्थिति सुदृढ़ हो गई। धीरे धीरे अमोघ वर्ष ने राज्य में शांति और व्यवस्था स्थापित कर लिया था। 830 ईस्वी में पूरी शक्ति के साथ उसने वेंगी के चालुक्य शासक विजयादित्य पर आक्रमण किया। वेंगी पर राष्ट्रकूटों का अधिकार हो गया, जो 12 वर्षों तक बना रहा। उसके बाद विजयादित्य के सेनापति पांडुरंग ने पुनः वेंगी पर अधिकार कर लिया। अमोघ वर्ष के शासन के अंतिम वर्षों में अनेक विद्रोह हुए। मैसूर के गंगों ने भी उसकी स्वाधीनता के खिलाफ विद्रोह किया। अमोघ वर्ष के सेनापति बंकी ने विद्रोही गंग शासक इनय को पराजित किया, परंतु उसे अमोघ वर्ष ने वापस बुला लिया। लगता है कि बाद में उसने गंग नरेश से संधि कर ली तथा अपनी पुत्री का विवाह उससे कर दिया। राजधानी के समीप उसके पुत्र राजकुमार कृष्ण ने विद्रोह खड़ा किया, लेकिन वंकेश ने उसे दबा दिया। अमोघ वर्ष को गुजरात के राष्ट्रकूटों के विद्रोह का सामना करना पड़ा। लात दक्षिणी गुजरात का वायसराय कर्क अमोघ वर्ष का संरक्षक था। उसके समय तक लात प्रदेश के राष्ट्रकूट अमोघ वर्ष के प्रति निष्ठावान बने रहे, परंतु उसके पुत्र ध्रुव प्रथम के समय 830 ईस्वी में उन्होंने अमोघ वर्ष की प्रभुसत्ता को चुनौती दी। दोनों परिवारों का संघर्ष 25 वर्षों तक चलता रहा। ध्रुव प्रथम पराजित हुआ था, मार डाला गया। उसका उत्तराधिकारी अकाल वर्ष 845 ईस्वी हुआ। उसे पहले सफलता मिली, परंतु बाद में अमोघ वर्ष के सेनापति बंकेई ने उसे पराजित कर दिया। अकाल वर्ष के बाद ध्रुव द्वितीय लात प्रदेश का राजा बना। उसके राज्य पर उत्तर की ओर से प्रतिहार नरेश मिहिर भोज ने आक्रमण करने की योजना बनाई। अतः ध्रुव ने अमोघ वर्ष से संधि करना उपयुक्त समझा। इस प्रकार दोनों परिवारों की शत्रुता का अंत हुआ। इस संधि के कारण उसका राज्य प्रतिहारों के आक्रमण से बच गया। सिरूर के लेख 856 ईस्वी में अमोघ वर्ष को अंग बंग मगध मालवा तथा वेंगी के राजाओं को नतमस्तक करने का उल्लेख मिलता है। इस दावे का समर्थन किसी अन्य प्रमाण से नहीं होता। ऐसी दशा में यह कह सकना बड़ा संदिग्ध है कि अमोघ वर्ष ने कभी भी उत्तर भारत में सैनिक अभियान किया था। वह जीवन भर दक्षिण के आंतरिक मामलों में ही उलझा रहा। उसके पास इतनी सैनिक योग्यता नहीं थी कि वह अपने पिता और पितामह की भांति सुदूर बिहार अथवा रंगाल के ऊपर आक्रमण कर सकता। अमोघ वर्ष ने 64 वर्षों 878 ईस्वी तक राज्य किया। अमोघ वर्ष में अपने पिता जैसी सैनिक क्षमता नहीं थी। वह शांत प्रकृति का मनुष्य था, जिसकी युद्ध की अपेक्षा धर्म और कला में अधिक रुचि थी। उसने मान्यखेत हैदराबाद के समीप मालखेत नामक एक नया नगर बसाया, जिसकी राजधानी को वहां ले गया। वह विद्या और कला का उदार संरक्षक था। उसने कविराज मार्ग नामक कन्नड़ भाषा में काव्य ग्रंथ की रचना की थी। उसने अपनी राजसभा में अनेक विद्वानों को आश्रय दिया था, जिसमें जिनसेन का नाम सर्वाधिक प्रसिद्ध है, जिसने आदि पुराण की रचना की थी। संजन ताम्रलिप विद्या तथा साहित्य के संरक्षक के रूप में अमोघ वर्ष को गुप्त सम्राट शाहसांग चंद्रगुप्त द्वितीय से भी महान विजेता बताता है, जिसके अनुसार विद्यादान तथा पुरस्कार देने में वह चंद्रगुप्त से भी बढ़कर था तथा चंद्रगुप्त के चारित्रिक दोष भी उसमें नहीं थे। अमोघ वर्ष जैन मत का पोषक था, यही उसकी शांतिवादी प्रकृति का कारण था। किंतु जैन मातानुनायी होते हुए भी वह हिंदू देवी देवताओं का भी सम्मान करता था। वह महालक्ष्मी का अन्य भक्त था तथा संजन ताम्रपत्र से पता लगता है कि उसने एक अवसर पर देवी को अपने बाएं हाथ की अंगुली चढ़ा दी थी। उसकी तुलना सिवी दधीची जैसे पौराणिक व्यक्तियों से की गई है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सेनानायक के रूप में अमोघ वर्ष भले ही असफल रहा हो, किंतु राजा के रूप में वह महान था। उसने अपने राज्य में शांति और व्यवस्था बनाए रखी तथा बाह्य आक्रमणों से अपनी प्रजा की सदैव रक्षा की। कला संस्कृति का वह महान उन्नायक था। उसकी मृत्यु 878 ईस्वी के लगभग हुई। कृष्ण द्वितीय अमोघ वर्ष प्रथम की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र कृष्ण द्वितीय शासक हुआ। उसका मालवा के प्रतिहार शासक भोज प्रथम था वेंगी के चालुक्य नरेश विजयादित्य तृतीय के साथ संघर्ष हुआ। मालवा के प्रतिहारों तथा राष्ट्रकूटों के बीच पुरानी शत्रुता थी। कृष्ण द्वितीय के राजा बनने के बाद प्रतिहार शासक मिहिर भोज ने उसके राज्य पर आक्रमण किया। संभवतः नर्मदा नदी के किनारे दोनों की सेनाएं टकराई, जिसमें विजयश्री प्रतिहारों के हाथ लगी। तत्पश्चात मिहिर भोज ने सेना के साथ गुजरात की ओर प्रस्थान किया। इस बार कृष्ण ने अधिक शक्ति के साथ उसका सामना किया। इस युद्ध में लात प्रदेश के राष्ट्रकूट सामंत तथा चेदी के राजा ने उसकी सहायता की। विजय कृष्ण को मिली। उत्साही होकर उसने प्रतिहारों की राजधानी उज्जैनी पर आक्रमण कर वहां अपना अधिकार कर लिया। बिगुआ अभिलेख से इस सफलता की सूचना मिलती है। इस विजय के द्वारा कृष्ण ने अपने साम्राज्य को प्रतिहारों के आक्रमण से सुरक्षित बना लिया। प्रतिहारों को भी इससे कोई विशेष हानि नहीं हुई। इस युद्ध के पश्चात दोनों एक दूसरे के प्रति उदासीन हो गए। इसके बाद उसने लात प्रदेश को अपने सीधे नियंत्रण में कर लिया था। वहां से वायसराय पद समाप्त कर दिया। कृष्ण द्वितीय का वेंगी के चालुक्यों के साथ दीर्घकालीन संघर्ष हुआ, जिसमें कुछ समय के लिए उसकी स्थिति दयनीय हो गई। उसके समकालीन चालुक्य शासक विजयादित्य तृतीय तथा भीम प्रथम थे। विजयादित्य तृतीय ने उसे परास्त कर दिया और कृष्ण द्वितीय ने भागकर मध्य प्रदेश के चेदी शासक शंकरगण के राज्य में स्थित करणपुर दुर्ग में एक शरण ली। वहां भी चालुक्य सेनापति पांडुरंग ने उसका पीछा किया। चालुक्य सेना ने किरणपुर पर अधिकार कर उसे जला दिया। कृष्ण द्वितीय को झुकना पड़ा और उसने चालुक्य नरेश की अधीनता मान ली। उसे उसका राज्य पुनः वापस मिल गया। विजयादित्य तृतीय के उत्तराधिकारी चालुक्य भीम प्रथम के समय में कृष्ण द्वितीय ने वेंगी पर पुनः आक्रमण किया। इस बार भीम पराजित हुआ था। कृष्ण ने उसके राज्य पर अधिकार कर लिया, परंतु भीम ने शीघ्र ही आक्रामक नीति जारी रखी और अपनी स्थिति सुधार कर राष्ट्रकूट सेनाओं को बाहर भगाकर अपने राज्य को राजा बनाया। किंतु कृष्ण द्वितीय ने वेंगी के ऊपर पुनः आक्रमण किया। राष्ट्रकूटों तथा चालुक्यों में निर्वधपुर, निनादवोसु तथा पेरुवनमुरु, पेंडवगुरु में भीषण युद्ध हुए, जिनमें संभवतः किसी भी पक्ष को निर्णायक सफलता नहीं मिली। इसके बाद दोनों पक्ष अपनी अपनी सीमाओं में लौट गए। कृष्ण द्वितीय का सुदूर दक्षिण के चोलों के साथ भी संघर्ष हुआ। पहले चोलों के साथ उसके संबंध मधुर थे। उसकी एक पुत्री का विवाह चोल नरेश आदित्य प्रथम के साथ हुआ था और इससे कन्नर नाम की अक्का एक पुत्र था। आदित्य प्रथम की मृत्यु के बाद 907 ईस्वी में प्रांतक चोल वंश का राजा हुआ। कृष्ण द्वितीय ने अपने पौत्र को राजगद्दी दिलाने के लिए प्रांतक पर आक्रमण किया। इस अभियान में उसकी सहायता बानों तथा वैदुम्बों ने की, जबकि गंग नरेश ने प्रांतक का साथ दिया। बल्लाल के युद्ध में प्रांतक ने कृष्ण द्वितीय और उसके सहायकों को पराजित कर दिया तथा उसका अभियान असफल रहा। बाद के कुछ राष्ट्रकूट लेखों में कहा गया है, कृष्ण द्वितीय ने गौड़ नरेश को विनय की शिक्षा दी और उसका प्रांगण अंग वंग वेंगी कलिंग और मगध के राजाओं से भरा रहता था, जो उसके प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए आते थे। किंतु इस प्रकार के विवरण काल्पनिक है तथा इनके आधार पर कृष्ण को इन स्थानों की विजय का निष्कर्ष निकालना तर्कसंगत नहीं होगा। कृष्ण द्वितीय ने 878 ईस्वी से लेकर 914 ईस्वी तक शासन किया। यद्यपि उसमें गोविंद तृतीय तथा ध्रुव के समान सैनिक कुशलता नहीं थी, तथापि उसने राष्ट्रकूट साम्राज्य को सुरक्षित बनाए रखा। अपने पिता के समान वह भी जैन मठ का पोषक था। प्रसिद्ध जैन आचार्य गुणचंद्र उसके गुरु थे, किंतु राजा के रूप में वह अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णु था। इंद्र तृतीय कृष्ण द्वितीय के पश्चात उसका पुत्र का बेटा इंद्र तृतीय 1914 से 1922 ईस्वी राजा बना, क्योंकि उसके पुत्र जंगतुंग की मृत्यु हो गई थी। वह एक सैनिक योग्यता वाला शासक था। अल्टेकर का विचार है कि इंद्र के राज्यारोहण के ठीक पहले या ठीक बाद प्रतिहारों के सामंत मालवा के परमार शासक उपेंद्र ने नासिक के ऊपर आक्रमण कर गोवर्धन को घेर लिया। संभवतः यह प्रतिहार शासक के इशारे पर हुआ। अतः इंद्र ने सर्वप्रथम उपेंद्र को पराजित कर गोवर्धन का उद्धार किया। उसने परमारों की राजधानी उज्जैनी पर अधिकार कर लिया था। उपेंद्र उसका सामंत बन गया। यहीं से उसने उत्तरी भारत में सैनिक अभियान किया। उत्तरी अभियान इंद्र तृतीय के उत्तरी अभियान का उद्देश्य भी अपने पूर्ववर्ती राजाओं की भांति कन्नौज पर अधिकार करना था। यह उस समय उत्तरी भारत का सर्वप्रथम नगर था। यहाँ प्रतिहार शासकों का अधिकार था। इंद्र उस पर अधिकार करने को ललायित था। सौभाग्यवश उसे अवसर प्राप्त हो गया। महेंद्रपाल की मृत्यु के बाद कन्नौज की गद्दी के लिए उसके दो पुत्रों भोज द्वितीय और महिपाल के बीच संघर्ष छिड़ गया। पहले चेदी शासक कोक्कल की सहायता से भोज ने गद्दी प्राप्त कर ली, किंतु बाद में महिपाल चंदेल हर्ष की सहायता से उसे गद्दी से उतारकर स्वयं राजा बन गया। इंद्र ने महिपाल को दंडित करने के उद्देश्य से 916 ईस्वी में हेमंत ऋतु में कन्नौज पर आक्रमण किया। उसकी सेनाएं संभवतः भोपाल, झांसी, काल्पी के मार्ग से गई। काल्पी में यमुना नदी पार कर इंद्र ने कन्नौज पर आक्रमण कर प्रतिहार नरेश महिपाल को पराजित किया तथा वहां अपना अधिकार कर लिया। इस पर अधिकार हो जाने से राष्ट्रकूटों की प्रतिष्ठा काफी बढ़ गई। कन्नौज पर अधिकार करना इंद्र की महानतम सैनिक उपलब्धि थी। यद्यपि उसके पहले ध्रुव तथा गोविंद ने प्रतिहार शासकों को पराजित किया था, किंतु फिर भी वे कन्नौज पर अपना झंडा नहीं फहरा सके थे। इस प्रकार जैसा कि अल्टेकर ने लिखा है, दक्कन के इतिहास में यह बड़े महत्व की और अद्वितीय घटना थी, क्योंकि ऐसे अवसर कम ही आए हैं जब दक्कन के किसी राजा ने उत्तर भारत की राजधानी पर कब्जा किया हो। इंद्र तृतीय का अभियान एक धावा मात्र था। वह संभवतः प्रयाग था काशी तक गया। उसके बाद 1916 ईस्वी की ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में स्वदेश लौट गया। 917 ईस्वी तक महिपाल ने कन्नौज पर पुनः अधिकार कर लिया। वेंगी पर अधिकार कृष्ण तृतीय के समय वेंगी के चालुक्य शासक भीम ने राष्ट्रकूट सेनाओं को अपने राज्य से बाहर भगा दिया था। इंद्र वहां पुनः अपना अधिकार करना चाहता था। उस समय तक भीम की मृत्यु हो चुकी थी तथा उसका उत्तराधिकारी विजयादित्य चतुर्थ बना। उसके समय में इंद्र ने वेंगी पर आक्रमण किया। वीरजापुर के युद्ध में विजयादित्य मारा गया तथा वेंगी के एक भाग पर राष्ट्रकूटों का अधिकार हो गया। बाद में इंद्र ने अपने आश्रित युद्धामल को वेंगी की गद्दी पर आसीन करवाया। लगभग 7 वर्षों तक वेंगी उसका अधीन बना रहा। इस प्रकार इंद्र तृतीय ने एक बार पुनः राष्ट्रकूट वंश के गौरव को प्रतिष्ठित कर दिया तथा अपनी शक्ति से उत्तरी भारत के राजाओं को आतंकित कर दिया। 929 ईस्वी में वह अकाल मृत्यु का शिकार हुआ। अमोघवर्ष द्वितीय, इंद्र तृतीय का पुत्र और उत्तराधिकारी अमोघवर्ष द्वितीय हुआ। उसके शासनकाल की किसी भी घटना के विषय में हमें ज्ञात नहीं है। राजा बनने के 1 वर्ष के भीतर ही वह मृत्यु का शिकार हुआ। उसकी मृत्यु की परिस्थितियां अज्ञात है। उसके बाद उसका छोटा भाई गोविंद चतुर्थ 930 ईस्वी में राजा बना। गोविंद चतुर्थ वह अयोग्य तथा दुराचारी शासक था। उसकी विलासप्रियता के कारण शासन शिथिल पड़ गया। कन्नौज के ऊपर प्रतिहारों का अधिकार हो गया। उसे चालुक्य शासक भीम द्वितीय के हाथों पराजित भी होना पड़ा। अतः उसके सामंतों, अधिकारियों तथा मंत्रियों ने उसे पदच्युत करने का षड्यंत्र रखा। उन्होंने इंद्र तृतीय के सौतेले भाई तथा गोविंद के चाचा अमोघवर्ष तृतीय को सिंहासन देने का निश्चय किया। फलस्वरूप 936 ईस्वी में एक राजक्रांति हुई जिसमें प्रमुख भूमिका वेबुलवाद के चालुक्य सामंत अरिकेसरीन ने निभाई। गोविंद तथा अरिकेसरीन के बीच युद्ध हुआ जिसमें गोविंद मार डाला गया तथा राजमुकुट अमोघवर्ष को मिला। अमोघवर्ष तृतीय, उसका वास्तविक नाम पंडेग था, वह पहले त्रिपुरी में निवास करता था। यहीं से उसने मान्यखेत को प्रस्थान किया और मंत्रियों तथा सामंतों के सहयोग से 936 ईस्वी में राष्ट्रकूट सिंहासन पर अधिकार कर लिया। उसने केवल 3 वर्षों तक शासन किया। अमोघवर्ष तृतीय धार्मिक प्रवृत्ति का शासक था और वह शासन में बहुत कम रुचि रखता था। अतः उसके योग्य पुत्र कृष्ण तृतीय ने शासन कार्य संभाला। उसने गंगवड़ी के शासक राजमल्ल पर आक्रमण कर उसे पदच्युत कर दिया तथा अपने साले भूतुग को राजा बनाया। युवराज के रूप में उसने बुंदेलखंड क्षेत्र में सैनिक अभियान किया और चित्रकूट के दुर्गों को जीता। 939 ईस्वी में अपने पिता की मृत्यु के बाद कृष्ण तृतीय शासक बना। कृष्ण तृतीय राज्यारोहण के समय उसने अकाल वर्ष की उपाधि धारण की। वल्लभ, नरेंद्र, पृथ्वी वल्लभ जैसी कुछ अन्य उपाधियां भी उसकी मिलती है। कांची और तंजोर को जीतने के बाद उसने कांचीयुम तंजे मकोंड कांची और तंजोर का विजेता की उपाधि धारण की। कृष्ण तृतीय एक कुशल सैनिक तथा साम्राज्यवादी शासक था। राजा बनने के बाद कुछ वर्षों तक उसने अपनी आंतरिक स्थिति सुदृढ़ की। तत्पश्चात उसने दिग्विजय की एक व्यापक योजना तैयार की। इस प्रक्रिया में सर्वप्रथम उसने चोलों के विरुद्ध सैनिक अभियान किया। 943 ईस्वी में उसने अपने साले गंग नरेश भूतुक के साथ चोल शासक प्रांतक के ऊपर आक्रमण कर दिया। उसका अभियान सफल रहा तथा कांची और तंजोर के ऊपर उसने अधिकार कर लिया। कुछ समय बाद प्रांतक ने सेना एकत्रित कर राष्ट्रकूटों को चुनौती दी। इस सेना का नेतृत्व युवराज राजादित्य ने किया। 949 ईस्वी में चोल तथा राष्ट्रकूट सेनाओं के बीच उत्तरी अर्काट जिले के टक्कोलम नामक स्थान पर निर्णायक युद्ध हुआ। राष्ट्रकूट लेखों से पता चलता है कि यह युद्ध बड़ा भयानक था। इसमें पहले तो चालुक्य सैनिक प्रबल रहे किंतु बाद में अपने सेनापति मल्लेर तथा गंगराज भूतुक की सहायता से राष्ट्रकूटों को विजय मिली और चोल युवराज राजादित्य इस युद्ध में मारा गया। चोल राज्य को जीतता हुआ कृष्ण रामेश्वरम तक जा पहुंचा जहां उसने एक विजय स्तंभ स्थापित किया। इस विजय के परिणाम स्वरूप उसका चोल राज्य के उत्तरी भागों पर अधिकार हो गया। करहाद के लेख से पता लगता है कि उसने चोलों के अतिरिक्त पांड्य, केरल और लंका के शासकों को भी पराजित किया था। दक्षिण के युद्धों से निवृत्त होने के बाद कृष्ण ने उत्तर भारत की ओर ध्यान दिया। 10वीं सदी के मध्य बुंदेलखंड के चंडेल प्रबल हो उठे और उसने कालंजर और चित्रकूट के दुर्गों के ऊपर, जो कि अमोघ वर्ष के समय में ही राष्ट्रकूटों के अधिकार में था, पर अपना अधिकार कर लिया। इन दुर्गों को पुनः अपने नियंत्रण में करने के लिए कृष्ण ने उत्तर भारत में सैन्य अभियान किया। इस बार उसका साथ चेदी नरेश मारसिंह ने दिया जो भूतुक का उत्तराधिकारी था। कृष्ण का इन दुर्गों पर अधिकार हो गया। इसके बाद 963 ईस्वी में उसने मालवा के परमार शासक सीयक को परास्त कर उज्जैनी पर अधिकार कर लिया। कृष्ण को वेंगी की राजनीति में भी हस्तक्षेप करने का अवसर मिला। वेंगी के चालुक्य शासक अम्म द्वितीय के विरुद्ध उसने बादप की सहायता की और उसे गद्दी दिला दी। इस प्रकार बादप उसका स्वामी भक्त सामंत बन गया। बादप के बाद ताल द्वितीय राजा बना। अम्म ने उसे मारकर पुनः गद्दी पर अधिकार कर लिया। कृष्ण ने उसके सौतेले भाई दानार्णव का समर्थन किया और उसकी सहायता में एक सेना वेंगी भेजी। 956 ईस्वी में इस सेना ने अम्म को पुनः परास्त किया तथा उसने भागकर कलिंग के राजा के यहाँ शरण ली। दानार्णव को कृष्ण ने वेंगी की गद्दी पर आसीन करवाया किंतु राष्ट्रकूट सेना के हत्ते ही अम्म ने पुनः वेंगी पर अधिकार कर लिया तथा राष्ट्रकूटों की अधीनता से अपने को मुक्त कर लिया। इस प्रकार कृष्ण अपने वंश के योग्यतम शासकों में से अंतिम शासक था। वह सही अर्थ में संपूर्ण दक्षिणापथ का सार्वभौम सम्राट था। यह श्रेय उसके किसी भी पूर्ववर्ती राजा को नहीं प्राप्त था। गोविंद तृतीय ने यद्यपि कांची को जीता था, लेकिन वह रामेश्वरम तक नहीं पहुंच पाया था, तथा द्रविड़ राजाओं की शक्ति का विनाश भी उसने नहीं किया था। वेंगी पर उसका पूर्णतया अधिकार नहीं था, किंतु कृष्ण ने पल्लव तथा चोल राज्य पर अपना नियंत्रण रखने में सफलता पाई थी। चोल राज्य के बड़े भाग पर वह स्वयं शासन करता था। रामेश्वरम में उसने कृष्णेश्वर तथा गंड मार्तंडादित्य के मंदिर बनवाए, जो सुदूर दक्षिण में उसके विजय के प्रमाण है। इन विद्वानों का आश्रयदाता भी, जिसकी राज्यसभा में कन्नड़ भाषा के कवि पूर्ण निवास करता था, उसने शांति पुराण की रचना की थी। उसकी सभा का दूसरा विद्वान पुष्पदंत था, जिसकी रचना ज्वाला मालिनी कल्प है। उसने 967 ईस्वी तक शासन किया। खोटिग, कृष्ण तृतीय ने संतान बढ़ा, अतः उसका भाई खोटिग उसके बाद राष्ट्रकूट वंश का राजा बना। वह अत्यंत निर्बल शासक था। उसके काल में मालवा के परमार नरेश सीयक ने राष्ट्रकूट राज्य पर आक्रमण किया। परमार सेना राजधानी मान्यखेत तक आ गई। 972 ईस्वी में उसने मान्यखेत पर अधिकार कर उसे खूब लूटा। सीयक अपने साथ अतुल संपत्ति लेकर लौटा। वह पराभव इस पराभव के फलस्वरूप खेटिग की मृत्यु 972 ईस्वी के लगभग हो गई। कर्क द्वितीय, खोटिग का उत्तराधिकारी उसका भाई कर्क द्वितीय हुआ। वह भी एक अयोग्य तथा निर्बल शासक था। वह केवल 2 वर्षों 972 से 974 ईस्वी तक शासन कर सका। इस काल में सामंतों के विद्रोह हुए, जिसे वह दबाने में असमर्थ था। तर्डवादी बीजापुर जिला के सामंत तैल द्वितीय ने उसके ऊपर आक्रमण कर उसे पदच्युत कर दिया था। सिंहासन पर अधिकार जमा लिया। 975 ईस्वी तक तैल ने उनके अन्य सामंतों और सहयोगियों को पूरी तरह समाप्त कर दक्षिणापथ का पर अधिकार जमा कर एक छत्र शासक बन बैठा। तैल ने जिस वंश की स्थापना की उसे कल्याणी का पश्चिमी चालुक्य वंश कहा जाता है। कर्क द्वितीय राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक था। उसके साथ ही दक्षिणापथ से राष्ट्रकूटों का लगभग 2 सदियों का राज्य समाप्त।